हरे कृष्णा। तो आज इस अंतिम सत्र में हम कंक्लूड करेंगे फाइनली जो भी अभी हमने अभी तक सुना है। तो कल हमने देखा कि कैसे ये आधुनिकता से पहले की स्थिति क्या थी और आधुनिकता के बाद में समाज में क्या स्थिति हुई है और उसकी वजह से कैसे हमारी भक्ति सेवा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उसमें हमने समय का अभाव, तदुपरांत अधिक बढ़ती हुई चिंताएं, चरित्र हनन, ये सब मुख्य चीजों के ऊपर चर्चा की। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रभुपाद जी ये सब जो बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उन सब के निवारण के लिए क्या सुझाव हमको दिए हैं, क्या करने को कहे हैं। और एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी जो भी कहे हैं वो सब शास्त्र आधारित है, वास्तव में श्री कृष्ण कहे हैं। तो ये सब जो आधुनिकीकरण है वो मनुष्य की कलियुगी बुद्धि की देन है, जिसकी वजह से ये अधिक से अधिक परेशानियां हम लोगों ने अपने आप उत्पन्न की हैं। तो इस भौतिक जगत के संचालन के लिए भगवान की जो व्यवस्था है जिससे कि ये समाज, ये भौतिक जगत में जितना अधिक से अधिक संभव है उतना आसानी से ये भौतिक जीवन चले, जिससे बेस्ट पॉसिबल अनुकूल परिस्थिति हमको मिले हमारे हरि नाम भजन के लिए, हमारी भक्ति के लिए, वो भगवान ने नियोजित किया है तरीका। अगर हम उसके विपरीत कुछ भी करते हैं उसको सुधारने के नाम पर, तो वो हम केवल उस स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं, उसको सुधार नहीं सकते। मनुष्य कभी भगवान से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। और विशेष रूप से आधुनिकीकरण में मनुष्य की बुद्धि है लोभ पे आधारित। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आधुनिकीकरण का पूरा जो दिशा है वो भक्ति के विरोधी है, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यवस्था भगवद गीता के अंदर व्यक्त की है इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, हमारे अपने मेटीरियल लाइफ को सुचारू रूप से रखने के लिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अनसंभवः, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो भगवान कहते हैं कि बेसिकली हम सब अन्न पर आश्रित हैं, ये है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अन्न और फिर कुछ रहने के लिए कुछ जगह इत्यादि। तो ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। अन्न जो है वो बारिश से आता है और बारिश यज्ञ करने से, और फिर यज्ञ वो हम सबका, मनुष्यों का वो निहित कर्तव्य है, वो युग धर्म तो है ही और हमारे सबका, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन हमारी है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हैं, लेकिन सबके अंतर्गत निहित है वो यज्ञ, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र। तो इस प्रकार से ये भगवान का दिया हुआ निर्देश है कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए, अनावश्यक इच्छाओं से प्रेरित हुए बिना, मात्र शरीर की मेंटेनेंस के लिए प्रकृति की गोद में जीकर भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहकर जीवन जीना चाहिए। कल हमने देखा कि कंफर्टेबल लाइफ की परिभाषा क्या है, कल हमने देखा कि कैसे ये कंफर्टेबल लाइफ ज्यादा मेटीरियल चीजों को इकट्ठा करने से नहीं होती है, वो अनकंफर्टेबल बनती है। कंफर्टेबल लाइफ मीन्स जितना हम कम से कम भौतिक इच्छाओं पर, भौतिक इच्छाएं हैं, जितना कम हम भौतिक चीजों पर आश्रित हैं, अटैच हैं उनसे, उतना ही अधिक हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये भौतिक स्थिति तो हमेशा बदलती रहेगी, इसमें समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन इससे डिटैच्ड हैं तो फिर वो जो बदलाव है वो हमको परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है गोस्वामी की तरफ जाना, और उस लक्ष्य को जाने तक वर्तमान में हमें जितना कम से कम में हम अपना गुजारा चला सकें उतने में चलाना चाहिए, वो मेटेरियली कंफर्टेबल है। और रियल कंफर्ट आता है भगवान की सेवा से, रियल आनंद जीवन का वो भगवान की सेवा से आता है। तो ये सिद्धांत समझने के बाद में हम यहां पर अभी कुछ प्रभुपाद जी हमें इस विषय में जो हमने समस्याएं देखी उसके विषय में क्या कहते हैं वो कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। ओ तो प्रभुपाद जी इसमें से हम कुछ चीज लेंगे। प्रभुपाद जी समय के विषय में क्या कहते हैं? 10-12 घंटे नौकरी हम लोग अभी कर रहे हैं सामान्यतः 12-13 घंटे। प्रभुपाद कहते हैं हाँ हम कार्य कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे। खाने के लिए यदि कुछ जमीन खेड़ने से हमें जानवरों गायों एवं अपने लिए खाना मिल जाए और यदि गाय मुझे दूध दे रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, तो क्यों मैं इतना कठिन परिश्रम करूं? कुकरों सूकरों का जीवन, दिन रात खाने एवं सोने के लिए परिश्रम, यह सभ्यता नहीं है। शांति से जियो, अच्छा भोजन पाओ और आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय बचाओ। तो वास्तव में हम प्रभुपाद जी पुस्तकों में अनेक बार ये सब सुन चुके हैं। प्रभुपाद जी कितनी बार कहते हैं नायम देहो देवाजाम निलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम। ये तो ये सब प्रवचन केवल सुनने के लिए तो नहीं है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। तो हम अभी देख रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज के आधुनिक समय में ये 12-13-14 घंटे हर रोज केवल इस पेट के लिए काम करना, जानवर भी शायद उससे अच्छे हैं, कुकर सुकर भी इतना काम जरूरत नहीं पड़ती वो करने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं तो अगर हमारे पास जमीन है उसको हम खेड़ के कर सकते हैं, ये भगवान का आयोजन है, उसने ऑलरेडी अरेंज करके दिया है, तो जैसा अरेंज किया है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। उसको इम्प्रूव करने जाएंगे तो और अपने लिए मुश्किल खड़ा करेंगे। बेरोजगारी के बारे में अगेन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बेरोजगारी हम लोगों ने बनाई है। अगर जमीन है और इस प्रकार से वर्गीकरण करें हम चार वर्णों में तो भी बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं है, जैसा हमने कल देखा। थोड़ा उनको फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। असत संग तो हमारी भक्ति सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के संग में रहें। तो किसी के जस्ट साथ में रहना असत संग नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति से बहुत डीप में आदान प्रदान करना वो असत संग बनाता है। आएगा आएगा आएगा। तो विशेष रूप से जब हम भौतिक समाज में आज रह रहे हैं और हमें निर्भर होना पड़ता है इस भौतिक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया पर, तो हमें बहुत कुछ उससे ग्रहण करना पड़ता है। हम उसके असत संग में आते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। एक ब्रह्मचारी सन्यासी अगर वो इस आधुनिक शहर में रह रहा है और उसका हेतु केवल प्रचार करना है तो वो उससे प्रभावित नहीं होगा उतना। लेकिन अगर कोई गृहस्थ भक्त इस शहर में रह रहा है और जो शहर के अंदर जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर निर्भर है तो वो उससे उस सत्संग में वो आएगा। नो प्रॉब्लम। फिर प्रभुपाद जी अशांत गृहस्थ आश्रम के बारे में भी एक बोलते हैं। एक कोई ठेले वाला जा रहा था उसको देख करके कि देखो ये ठेला चला रहा है, इसकी पत्नी साथ में है, बच्चा भी छोटा है, वो वहां बैठा है। काम खत्म होने के बाद ये घर जाएंगे, पत्नी खाना बनाएगी, पति खाएगा, बच्चे का भी ध्यान रखेगा, उसको मारेंगे नहीं गर्भ के अंदर। तो ये शांत जीवन है, भले ही उनका खाना सिंपल होगा, उसमें फास्ट फूड्स हो अमेरिका से और वहां से ये सब नहीं होंगे, पोमीग्रेनेट्स अफगानिस्तान से, सिंपल होगा लेकिन फिर भी शांत होगा, गृहस्थ जीवन शांत होगा। तो वो ज्यादा जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी स्वास्थ्य, ये सब टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किए, स्वास्थ्य के विषय में भी कह रहे हैं कि जो ग्रामीण जीवन है कम चिंताएं हैं और इसलिए हेल्थ अच्छा है। और जब हम अपना खुद उगाते हैं और ये सब आसुरी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और ये सब के बिना, सो ऑटोमेटिकली वी विल बी हेल्दी। और फिर आयुर्वेद, उसके माध्यम से अगर बीमारियां हैं तो हम उसके उपाय से हम रह सकते हैं। ये मेडिकल बिल्स जो हैं तो हमें भक्तों के अंदर ही अपने आप में कुछ भक्तों को वो लेना पड़ेगा, हैव टू बिकम दिस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। जब तक हम आधुनिक अर्थव्यवस्था पर कहीं पर भी निर्भर हैं, जितना ज्यादा निर्भर हैं उतना ही हमको दिक्कत है। उससे सबसे हमको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अपना सिस्टम मीन्स कृष्ण का सिस्टम ऑलरेडी जो भगवान ने दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी हेल्थ के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, अपनी कारों में इधर उधर दौड़ने से उन्होंने स्वयं को एवं अन्यों का जीवन खतरों से अधिक युक्त कर दिया है। किसी भी क्षण दुर्घटना घट सकती है, पर वे इसे सभ्यता कहते हैं। बकवास, यह सभ्यता नहीं है। सभ्यता का अर्थ है शांति एवं समृद्धि। शांति एवं समृद्धि में व्यक्ति को सदैव कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि आज डेथ्स का, मृत्यु का एक सबसे बड़ा कारण अमेरिका के अंदर नंबर 1 रीजन फॉर डेथ इज एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स। तो बहुत सामान्य है, आप कहीं भी रोड पे जा रहे हैं, हर रोज सबको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो आप सही हैं, लेकिन सामने वाला कोई और विचार में है, चिंता में है, सबको चिंता तो रहती है, तो चलाते चलाते कुछ चिंता में है, तो एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। तो ये क्यों है, ये सब आर्टिफिशियल है। तो हम लोग कई बार बोलते हैं वो गाँव में सांप हैं, तो शहरों में कारें हैं, ट्रक हैं, अब दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो सांप तो दिन में है, तो सांप तो कभी आपको जबरदस्ती काटने को नहीं आता, वो डरता है हमसे, कभी बाई चांस पैर रखा तब काटेगा, और उसमें से ज्यादातर सांप विषैले नहीं होते हैं, तो बहुत कम संभावनाएं हैं। लेकिन एक्सीडेंट की कितनी संभावनाएं हैं, जब भी आप रोड पर हैं, एवरी मोमेंट देर इज ए कोबरा इन फ्रंट ऑफ यू, कभी भी, इट्स अ ट्रूथ एक्चुअली, इट्स नॉट जोक। जो ड्राइविंग करते हैं, हल्का झोंका आ गया, दे कैन सी इमीडिएटली, एनीथिंग कैन हैपन, सो इट्स वेरी डेंजरस लाइफ विच वी हैव क्रिएटेड। तो प्रभुपाद जी ये पॉइंट बोलते हैं, तो क्यों हम ऐसा जीवन बनाएं। शिक्षा के विषय में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं, जो हमने कल भी सुना। प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई शिक्षा नहीं शिक्षा की आवश्यकता केवल मार्गदर्शन देने वाले वर्गों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी के लिए नहीं, केवल इन दो के लिए। अन्यों के लिए किस शिक्षा की आवश्यकता है? माना यदि आप उगाते हैं, अगर आप खेती और गोपालन का जानते हैं, तो विद्यालयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो पैसा कमाने के लिए, डिग्री के लिए है, लेकिन अगर हमारे पास जमीन है, हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये था ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार समथिंग लाइक दैट, और थर्ड क्लास वॉज नौकरी। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, अभी सब लोग कोई खेती करता है पिछड़ा हुआ है, लेकिन कहीं नौकरी करेगा, किसी एक ड्रंकार्ड शराब पीने वाला और मांसाहारी की नौकरी करेगा, तो वो सोचेगा मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं। तो ये सब बदल गया है, तो ये हमको भी बदलना है अभी वापस। तो ये सब स्वावलंबी, एक गर्व होना चाहिए कि हम स्वावलंबी हैं। भक्त का गर्व है कि वो कृष्ण पे निर्भर है, लेकिन कम से कम किसी एक थर्ड क्लास आदमी का नौकर नहीं बनना चाहिए। तो ये शिक्षा के विषय में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरुकुल की शिक्षा होनी चाहिए। प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा हो, आधुनिक शिक्षा हमारा चरित्र हनन कर रही है और सबको नौकर बना रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का तो गुण डेवलप होने का चांस ही नहीं है, सब शूद्र, सबको जबरदस्ती शूद्र बनाया जा रहा है। तो इसलिए, और स्त्रियों के लिए जैसा गुरु महाराज ने कहा, उनके लिए शिक्षा चाहिए, कैसे घर का ध्यान अच्छे से रखना, रसोई बनाना और पतिव्रता कैसे होना, उनको वो शिक्षा चाहिए। तो उनको स्कूलों में इस प्रकार से जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में जो स्त्रियां हैं, मां है उनकी, वो उनको वो सिखाए। फिर प्रभुपाद जी ये समस्याएं का सॉल्यूशन देने के बाद में प्रभुपाद जी एक जगह, कई जगह बताते हैं कि वास्तविक समृद्धि क्या है, क्योंकि एक बड़ा प्रोपेगेंडा है कि ये जो ग्रामीण जीवन है पिछड़ा हुआ जीवन है, ये गरीबी का जीवन है, ये ऐसा प्रोपेगेंडा से हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है। हम लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति ये पक्के मकान में रह रहा है वो उससे ज्यादा एडवांस्ड है जो कच्चे मकान में रह रहा है, जो आदमी नौकरी कर रहा है वो खेती करने वाले से ज्यादा एडवांस्ड है, जो शहर में रह रहा है वो गांव वाले से ज्यादा एडवांस्ड है। ये हमारे मन में कूट कूट के भरा गया है, ये एक दो साल की बात नहीं है, ये कई कई जनरेशन से ब्रिटिश, ये पूरा इसके पीछे सिस्टमेटिक प्लानिंग से ये सब ब्रेन वॉश किया गया है हम सब लोगों का। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि प्राकृतिक समृद्धि, हमारे शास्त्र कहते हैं कि समृद्धि क्या है, वैदिक अर्थ प्रणाली के अनुसार व्यक्ति को उसके अनाज के भंडार एवं गायों के बल के आधार पर धनी माना जाता है। तो गाय और अनाज के भंडार, तो आप सबको जो बड़े हैं उम्र में उनको भी याद होगा, इस आधार पर विवाह भी होता था कि जो व्यक्ति जिससे विवाह करना है तो उसके पास अनाज उगाने के साधन उपलब्ध है और गाय है कि नहीं, अगर ये दो चीज है तो वो समृद्ध माना जाता था। लेकिन आज जिसके पास 12-14 घंटे काम करने वाली एक नौकरी है वो समृद्ध माना जाता है, वो बहुत है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते आपको। आपके पास जमीन है तो आप हमेशा वहां काम करके फिक्स रह सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी है कभी भी आपको कोई निकाल सकता है, या आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, जैसा ही वो बोले वैसा करना पड़ेगा। गाय एवं अनाज, इन दो चीजों से मनुष्य की खाद्य समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। मनुष्य समाज को उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्र पर्याप्त मात्रा में अनाज एवं पर्याप्त मात्रा में गायों की आवश्यकता है। इन दो के अलावा अन्य सभी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने समय को व्यर्थ करने के लिए बनाया है। देखिए कितना स्ट्रांगली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल दो चीजें हैं, आर्थिक समस्या मतलब जस्ट दिस टू थिंग्स, पर्याप्त मात्रा में अनाज और पर्याप्त मात्रा में गाय। इसके अलावा आर्थिक के नाम पर जो भी कुछ है वो सब कृत्रिम आवश्यकताएं हमने बनाई हैं अपने समय को व्यर्थ करने के लिए। तो अभी हमको सोचना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं और फिर हम अभी देखेंगे। तो प्रभुपाद जी भक्तों को निर्देश क्या दिए हैं, ये वर्णाश्रम को पुनः स्थापित करने के लिए, फार्म कम्युनिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, वापस खेती के जीवन में जाने के लिए, तो ये सब बहुत नई चीज लग सकती है कि ये तो हमने कभी सुनते नहीं है। जप के बारे में सुनते हैं और अपराध नाम अपराध के विषय में सुनते हैं, जो सुनना चाहिए, जो हमारा हेतु है, मुख्य है। फार्मिंग हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है हरिनाम करना। लेकिन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि वो हरिनाम करने के लिए अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जाए। तो अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत जगह निर्देश दिए हैं। और ये वर्णाश्रम के बारे में भगवद्गीता में कितना भगवान श्री कृष्ण निर्देश दिए हैं, भागवतम में कितना निर्देश है। तो हम यहां पर स्पेसिफिकली फार्म कम्युनिटी के बारे में प्रभुपाद जी क्या क्या बोले हैं उसमें से कुछ हम देखेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये मेरी इच्छा है शारीरिक आराम के लिए समय व्यर्थ मत गवाओ। आपका शरीर है, आपको खाने को कुछ चाहिए, कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, इसलिए अपना खाना उगाओ और अपना कपड़ा उगाओ। ऐशो आराम के लिए समय व्यर्थ मत गवाओ और हरे कृष्ण जपो, यह जीवन की सफलता है। इस मशीनी सभ्यता के लुभाव में लुभाने में मत आओ, यह बहुत कठिन नहीं है। एक कुटिया, कहीं भी आप अपना भोजन उगा सकते हैं और इसे आयोजित करने में, समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में वर्गीकृत करने में, जैसे शरीर में वर्गीकरण है, वर्णाश्रम आपकी मदद करेगा। इस मनुष्य देह को इंद्रिय भोग के लिए व्यर्थ मत गवाओ। तो ये सब प्रभुपाद जी बोले हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम शहर में हैं, आराम से हैं, दो घंटा टाइम मिलता है हमको हर रोज जप करने का, तो है ना। अगर आपको दिन में 6 घंटा जप और आपकी साधना के लिए मिल सकता हो तो फिर हम 2 घंटे में संतुष्ट क्यों हों? क्या ये भक्ति कहलाएगी? 2 घंटा मिलता है ना, बस खत्म, फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए? जप के लिए टाइम मिल गया 2 घंटा, तो हमें जब क्या 16 माला कम से कम करने का हम वचन देते हैं गुरु को, ना कि ज्यादा से ज्यादा 16 माला। तो अगर हमें पता है कि इससे अधिक अनुकूल स्थिति है पॉसिबल जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो फिर हम क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं कि हमें वो अनुकूल में नहीं जाना है? क्योंकि हम अटैच्ड हैं कि बस 2 घंटे ही माला करने का टाइम मिले बहुत है, क्योंकि उसके अलावा जो मेरा भौतिक सुख है वो मुझे जरूर चाहिए। तो फिर इसका मतलब हम नहीं समझ रहे हैं कि हरिनाम कितना महत्व का है। तो हरिनाम 2 घंटा क्यों, पूरा 24 घंटे हरिनाम होना चाहिए। उसका एक क्षण भी, अगर 1 सेकंड भी उसमें कम हो रहा है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसको हम बचा सकते हैं, तो हमें दुख होना चाहिए कि मेरा समय बर्बाद हुआ, इसमें अननेसेसरली बर्बाद हुआ। उसका सोल्यूशन है, भगवान खुद दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमको इतनी ईगरनेस होनी चाहिए कि मेरा क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी जरूरी है सोना 6 घंटा और ये सब, तो कम से कम जितना मिनिमम कर सके उसके लिए जो भगवान ने सिस्टम दिया वो क्यों नहीं अपनाए। तो ये अटैचमेंट दिखाता है कि हम अटैच हैं भौतिक आराम से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक ऐशो आराम में अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। तो अभी हम लोग सुनते हैं कई बार, आप जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, आप हरे कृष्ण जप करो, सो दैट्स ऑल राइट, दैट्स बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण जप करने से पहले आपको फार्म कम्युनिटी जाना पड़ेगा तब हरे कृष्ण जप शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको वैरागी बनना पड़ेगा तब आप हरे कृष्ण जप शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसी भी स्थिति में, आप करोड़पति हैं, आप बहुत अटैच्ड हैं, कोई भी है, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बस हरे कृष्ण जप करिए और हमेशा अटैच रहिए, इसका यह मतलब भी नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र शुरू करने का प्रभाव होना चाहिए कि हम अभी डिटैच हों और फिर तैयार हों कि जो भी अभी हरे कृष्ण मंत्र की गुण को और मात्रा को बढ़ाने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थिति है उसको हम अपनाएं और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ें। आगे स्टेप ये भी है, हरर नाम केवलम का अर्थ नहीं है कि केवल हरि नाम जैसे तैसे करके संतुष्ट हो जाएं, उसका मतलब ये नहीं है। तो हमें उसको आगे प्रगति करनी है ना, अपनी क्वालिटी में और क्वांटिटी में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, प्रभु को कृष्ण भावनामृत का यह अगला पहलू है जिसे मैं बढ़ावा देना चाहता हूं। यदि मैं पुनः भ्रमण कर सकूं तो मैं फार्म्स यानी खेती पर आधारित भक्त समूहों की यात्रा करूंगा और उन्हें पूर्ण बनाऊंगा। इन फार्म्स पर हम वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ये फार्म सफल हो गए तो पूरा जगत कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये फार्म यदि प्रभुपाद जितना चाहते तो हमारे इस्कॉन के अंदर हम क्यों देखते नहीं कि फार्म्स डेवलप हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुए, टेम्पल्स बिल्डअप हुए, लेकिन फार्म्स डेवलप नहीं हुए। तो क्या प्रभुपाद जी ने वास्तव में इस पर जोर दिया और प्रभुपाद जी ने क्यों शुरू में आकर कई फार्म नहीं डेवलप किए? तो यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, और अगर हम डिटेल में जाएं तो प्रभुपाद जी का जो पूरा आंदोलन है उसके चार पहलू हैं जो प्रभुपाद जी एक के बाद एक प्रस्तुत किए। उसमें सबसे पहला जो पहलू है वो था संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले अमेरिका में गए तो सबसे पहले टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्णा कीर्तन से प्रारंभ किए। वो स्टार्टिंग है, वो बेसिस है, और फिर क्लासेस भगवद्गीता भागवतम क्लासेस शुरू किए। ये पहली वेव है प्रभुपाद जी के आंदोलन की। इस वेव को एस्टैब्लिश जब थोड़ा हो गया उसके बाद प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट वेव यानी कि टेम्पल बिल्डअप मंदिर निर्माण शुरू किया। ये उनके आंदोलन की दूसरी वेव है कि मंदिर निर्माण हो। मंदिर निर्माण किस लिए हो? जिससे कि भक्त लोग आए वहां पर अर्च विग्रह की सेवा में भाग ले सकें। ये बहुत साइंटिफिक है। पंचरात्रि की हरिनाम और फिर पंचरात्रि की, इसके द्वारा उनकी प्रगति हो। तो ये सेकेंड वेव थी। तो बहुत मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। फिर अभी प्रशिक्षण, ये तीसरी है। दीक्षा लोग लें, प्रशिक्षित हो, आगे प्रगति करें और फिर दीक्षा लें। ये प्रभुपाद जी के आंदोलन की तीसरी वेव थी। प्रॉपर उनका एजुकेशन हो, वो आगे प्रगति करके दीक्षा लें। और फिर जो चौथी वेव है वो है ये वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, जिसे प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को और गांधी जी को अपने पत्रों में लिखे कि इस प्रकार से चार स्टेप्स का ये मूवमेंट है जिसके द्वारा पूरी सोसाइटी सुख समृद्धि से रह सकती है। तो ये प्रभुपाद जी जैसे से प्रारंभ के बाद में अपने इस भौतिक जगत, इस समय के निवास के अंतिम वर्षों में प्रभुपाद जी अधिक से अधिक फार्म्स के ऊपर जोर दिए, क्योंकि अब ये चौथी वेव थी जो प्रभुपाद चाहते थे कि अब ये फोर्थ वेव आनी चाहिए जिससे कि पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। और ये पूरी पिक्चर कंप्लीट होने के बाद क्या परिणाम होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा जगत कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। तो ये पूरा उनका प्लानिंग था शुरू से, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इसको मैनिफेस्ट किए। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं पुस्तक वितरण एवं फार्म ये हमारे ठोस कार्यक्रम है, ये पूरे जगत को बदल सकते हैं। प्रभुपाद रिवॉल्यूशन चाहते थे, और रिवॉल्यूशन चाहने के लिए करने के लिए वो कहते हैं कि ये दो मेन एक्टिविटीज हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फार्म। पाश्वी सभ्यता की पूरी नींव नष्ट की जा सकती है। यदि मैं और जीऊं तो मैं इन फार्मों को आयोजित करना चाहूंगा, इन्हें पूर्ण बनाना चाहूंगा, सादा जीवन और उच्च विचार। ये एक कोट है, लंबा है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। ये बीवीके संगमेल में आया था। तो ये डिवोटी है जो न्यू वृंदावन में थे, कुलाद्रीदास, तो बता रहे हैं कि वो प्रभुपाद जी के साथ में रहे अंतिम दिनों में। विशेष रूप से प्रभुपाद हमेशा जोर देते थे फार्म के ऊपर उनको, क्योंकि वो फार्म पर थे, और प्रभुपाद जी ने उन्हें कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम्फेसाइज नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बोले ये मेरा अगला जो फेज है फार्म, ये पहले वाले फेज से बिल्कुल अलग होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, सिटी प्रीचिंग बंद हो जाएगी, वो मतलब नहीं है। तो जो लोग उसमें हैं वो लोग उसको पुश करते रहेंगे, जब तक शहर है तब तक शहर में प्रचार चलेगा। लेकिन दूसरी फेज का जो है तो वो अलग डायरेक्शन है। वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, वहां सेंटर है अपना खाना कैसे हम उगाएं अपने लिए और दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन एम्फेसाइज नहीं किया, प्रभुपाद जी हमको ये एम्फेसाइज किया हाउ वी शुड ग्रो। प्रभुपाद जी आस रिपोर्ट कैसे हो रहा है, कितना दूध है, कितना दूध मिलता है, क्या क्या उगा रहे हो, क्या फूल उगा रहे हो, क्या अनाज उगा रहे हो। तो प्रभुपाद बताते हैं कि प्रथम भाग में ये एक टेक्निक है, इमरजेंसी टेक्निक एस्टैब्लिश करने के लिए। अभी जब एस्टैब्लिश हो गया तो मैंने अपनी पुस्तकों में जो जीवन दर्शाया है कि गोलोक में ऐसा जीवन है, भक्तों का ऐसा जीवन होना चाहिए, अभी उसको प्रैक्टिकल रूप देने की बारी है। जब तक उसको प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पलीफाई नहीं करेंगे तब तक लोग उन पुस्तकों को अधिक वजन नहीं देंगे, वो केवल एक थ्योरी बनकर रह जाएगा। हम भी पढ़ते हैं ये सादा जीवन अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन केवल सुनने की बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि अभी अपनी पुस्तकों में जो उन्होंने बोला है उसको प्रैक्टिकल रूप दें। फिर प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी की डायरी में यह उल्लेखित है कि मेरा 50% कार्य ही पूरा हुआ है, फार्म बाकी है, अगर वे स्थापित हो गए तो वर्णाश्रम स्थापित हो जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 50% इज लेफ्ट, तो कितना महत्वपूर्ण ये कार्य अभी शेष है। तो वो है प्रभुपाद छोड़ के गए हमारे लिए कि हमको इसको करना है। तो इसलिए हमें बहुत सचेत होना चाहिए कि कैसे हम प्रभुपाद जी की इस इच्छा को पूरा करें। प्रभुपाद कह रहे हैं ये शेष रह गया है, तो अगर हम प्रभुपाद अनुयायी हैं तो हमें प्रभुपाद जी के पूरे आंदोलन को समझना चाहिए, उसकी चारों वेव को समझना चाहिए और चारों वेव के समझ करके उपयुक्त प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ये पूरा जो सिंपल लिविंग है, इसका जो स्लोगन है, इसका जो एसेंशियल पॉइंट है, इसका जो प्रिंसिपल है, उसको व्यक्त किए सरल भाषा में, जिसको हमें समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिंपल लाइफ जिए तो ये समझना प्रिंसिपल जरूरी है। तो प्रिंसिपल है वही खाओ जो आप उगाओ और वही उगाओ जो आवश्यक है। ये नटशेल है प्रिंसिपल का। अगर हम इससे अलग जाएंगे कहीं भी तो फिर वही वापस शहर में आ जाएंगे। जो उगाते हैं यानी लोकली बेस्ड होना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चलेगा। अगर आपके वहां पर सेब नहीं उगता है तो सेब नहीं खाना है। अगर आपके यहां चीकू उगता है तो चीकू खा के संतुष्ट रहिए। आपके एनवायरमेंट के लिए चीकू ही श्रेष्ठ है। जो सीजन में आता है वही खाइए। ऐसा नहीं कि अभी सीजन तो है नहीं आम का, लेकिन हमको आम खाना है तो इसलिए डीप फ्रिज में वहां पर रखा हुआ है गोडाउन में, और वहां से फिर अभी गर्मी में भी सर्दी में भी कैरी का जूस चाहिए, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और वो उसको प्रिजर्व करने के लिए कितना उसमें शक्ति जा रहा है। तो इसलिए लोकली बेस्ड, जो भी लोकली अवेलेबल जिस समय जो है वो भगवान की तरफ से आपको दिया गया है, एंड इट विल बी सफिशियंट फॉर एवरीवन टू मेंटेन द बॉडी हेल्दी। देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट वेरी फ्यू थिंग्स, जैसे कि कुछ नमक या कुछ मसाले जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बहुत मिनिमम, बट बेसिकली मोर और लेस 99% चीजें वो वहीं लोकली हम ग्रो कर सकते हैं। और फिर उगाना वही चीज है जो आवश्यक है, तो तंबाकू नहीं उगा सकते है? जो आवश्यक है मिनिमम बॉडी के लिए वही चीज उगाएंगे और वही खाएंगे जो उगाएंगे। फिर अगला सिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं कि हमें क्या दिखाना है। ये बेसिकली क्या है, प्रकृति की गोद में जीना कृष्ण पर निर्भर रह करके। अभी हम कहां जी रहे हैं, साइंटिस्टों की गोद में नहीं, शहरों की गोद में साइंटिस्टों पर निर्भर होकर के जी रहे हैं। तो उसकी जगह प्रकृति की गोद में कृष्ण पर निर्भर होना है। कृष्ण पर निर्भरता हम सीख सकते हैं प्रकृति गोद में जी करके। शहर में जी करके तो हम साइंटिस्टों को बखान करते हैं, साइंटिस्ट यदि ये नहीं देते ऐसी तो क्या होता हमारा। लेकिन जब हम प्रकृति गोद में जियेंगे तो हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कहता हूं कितना उन्होंने सिस्टमेटाइज सब किया है। बच्चों को हम शुरू से ही बता सकते हैं देखो भगवान का आयोजन है। अभी शहरों में बच्चे चाहो तो देखते हैं सब आदमी का आयोजन है, तो उनको समझना और मुश्किल है कि भगवान ने सब कुछ बनाया, क्योंकि चाहो तो सब आदमी ने बनाया है। दूध भी तो पॉलिथीन पैक में आता है, वो भी सुपर मार्केट से लेना पड़ता है, वो भी आदमी का, तो वो भी गाय से आता है, वो भी उसको पता नहीं लगता है। तो फिर उसके लिए कि सब भगवान बनाने वाले हैं, सब भगवान कर रहे हैं, तो और मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक स्विच ओके ओके सो समय के अभाव की वजह से हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आई थिंक एसेंस जो है वो स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी की इच्छा है, शास्त्र का निर्देश है कि हम लोग इस फार्म कम्युनिटीज को सीरियसली लें। तो इसके दो हेतु हैं, एक तो भक्त जो है विशेष रूप से गृहस्थ भक्त, उनको अपनी भक्ति सुधारने के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने के लिए, और दूसरा है प्रचार के लिए, एग्जाम्पल प्रोड्यूस करके दूसरे लोगों को हम कृष्ण भावनामृत में ला सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत केवल हरे कृष्ण जब तक ही सीमित नहीं है, वो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, व्हाट एवर इज नेसेसरी फॉर लिविंग दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हरे कृष्ण मूवमेंट। तो उससे लोगों को क्या हो ओके हरे कृष्णा आई स्पीक इट लाउड। तो लोग जब देखेंगे कि यह हरे कृष्ण आंदोलन में सबका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं मैं हरे कृष्ण जब करना चाहता हूं लेकिन ये स्थिति इतनी खराब है क्या करूं, तो आपकी स्थिति सुधारने के लिए भी हरे कृष्ण आंदोलन के पास उपाय है। तो जब लोग ये देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रचार बड़े स्केल पे करना और भक्तों के अपने जीवन को सुधारने के लिए, ये दो हेतु से ये फार्म कम्युनिटीज बहुत जरूरी है। तो अभी एक दूसरा प्रश्न आता है, तो फिर शहरों में जो प्रचार हो रहा है उसका क्या होगा? तो प्रभुपाद बोले, जब तक शहर है तब तक शहर में प्रचार होगा, लेकिन हमेशा शहर नहीं रहेंगे। ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है इकोनॉमी और जो पूरा, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये पूरा मॉडर्नाइजेशन ये पेट्रोल पे आधारित है। वो जहां पेट्रोल पीक लेवल से आगे गया वहीं पर ये सभ्यता खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी क्यूबा के अंदर पूरा सबके सब लोग ग्रामीण पे आने के लिए विवश हुए। सबके घर हैं शहरों के अंदर लेकिन सब जगह खेती होती है। तो ऑलरेडी क्यूबा इज एन एग्जाम्पल। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, सबको उस तरफ आना ही पड़ेगा। तो जब तक शहर है हम लोग शहर में प्रचार करेंगे ऑब्वियसली। तो लेकिन शहर में प्रचार हम करेंगे जिससे जो लोग शहर की वजह से भक्ति में रुकावट अनुभव कर रहे हैं, यानी कि अनुकूल नहीं है परिस्थिति, तो उनको हम प्रचार करके शहर में लाएं। जैसे महाराज बोले कि हम यहां पर सब लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं, क्या सुनने के लिए? कि अलग अलग जगह मत जाओ, एक ही जगह रहो, ये सुनने के लिए। तो उसी प्रकार से शहर में हम प्रचार करेंगे इसलिए कि शहर में मत रहो, गांव में रहो। तो जो लोग इस प्रचार के लिए जरूरी हैं केवल वो लोग शहर में रहेंगे। तो वो लोग कौन लोग हैं? जो लोग शहर में रहें और केवल प्रचार कर सकें, उनकी आर्थिक समस्याएं नहीं है जिसकी वजह से उनकी खुद की भक्ति नहीं हो पा रही, जो फ्री हैं, यानी विशेष रूप से ब्रह्मचारी और सन्यासी या ऐसे कुछ गृहस्थ जो सौभाग्य से भगवान की कृपा से इस स्थिति में है कि उनको इकोनॉमिकली और किसी तरह कोई समस्या नहीं है, वो पूरा समय पूरी शक्ति अपनी केवल प्रचार में लगा सकते हैं, ऐसे कुछ सौभाग्यशाली गृहस्थ भक्त हैं तो वो शहर में रहकर के अच्छे से प्रचार करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेजोरिटी जो गृहस्थ भक्त हैं उनकी क्या स्थिति है? उनको तो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परेशानी अनुभव करनी पड़ती है। तो उन लोगों को अच्छा है कि वो लोग गांव में आकर के रहें अपनी भक्ति के लिए। फिर अभी हम ये जो यहाँ पर सेमिनार ले रहे हैं तो उसका आशय ये है कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें कि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है और इसका ये महत्व है और इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको हमें कैसे करना है उसके लिए तालमेल की जरूरत है। जो भक्त शहर में प्रचार कर रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स और प्रचारक अलग अलग क्षेत्र के, उनके सबके विचार विमर्श से हम लोग मिलकर के ये स्ट्रेटेजी करेंगे कि कैसे हमको फार्म डेवलप करना है। यानी फार्म और सिटी प्रीचिंग ये एक यूनिट है, ये अलग अलग यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉपरेशन की जरूरत है। जो लोग गांव में जाएंगे उनको, जो लोग शहर में अभी भी हैं उनके भी आवश्यकता पड़ेगी उस सपोर्ट के लिए और प्रचार के लिए। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलाकर के एक यूनिट है। तो यहां पर हम जो बात व्यक्त कर रहे हैं उसका आशय ये नहीं है कि अभी वो ये सिटी प्रीचिंग से लोगों को अलग निकाल देना है या सिटी के जो प्रचारक हैं उनके उससे अलग निकाल देना, इस प्रकार के भावना नहीं है। लेकिन सिटी प्रीचर्स और जो वर्णाश्रम प्रीचर्स हैं उनको मिलकर के देखना है कि हमारे पूरे कांग्रीगेशन के लिए क्या बेस्ट उपाय है उनकी भक्ति को इम्प्रूव कराने के लिए। फिर एक और अन्य प्रश्न सामान्य रूप से रहता है कि अभी हम तो सब शहर में पले हुए हैं ना, तो हम वापस जाएंगे तो ट्रांजिशन फेज में बहुत दिक्कतें आएंगी, हमारा शरीर उसके अनुसार डेवलप नहीं हुआ है, मन भी उसके हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, तो बहुत हमको दिक्कतें आएंगी और समाज पूरा उल्टी दिशा में जा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। हम ये बात भी रखते हैं तो सब लोग हमको धिक्कारेंगे। कोई अगर पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल से निकालता है और गुरुकुल में रखना चाहता है तो पूरी सोसाइटी सब रिलेटिव उसको धिक्कारेंगे कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा बच्चे करियर खराब कर रहे हो और क्या कुछ नहीं कहेंगे। तो वो तो हम ऑलरेडी जब हम भक्ति में आए तब भी तो हम ये सब अनुभव किए ना, सब रिलेटिव क्या हमको ढिंडोरा पीट के बोले बहुत वेल एंड वेल वेरी गुड। तो वैसे ये भी एक और रिवॉल्यूशन है। सो ऐसा होगा तो अभी तो फिर भक्त लोग सोचते हैं कि बहुत समस्याएं हैं वापस जाने में, तो ठीक है इसका उपाय क्या है फिर? तो समस्याएं इस भौतिक जगत में यानी इस शहरी जीवन में रहने में भी समस्याएं तो हैं, बहुत बहुत समस्याएं वो हमने देखा, और ये जो ट्रांजिशन फेज है उसमें भी समस्याएं आएंगी निश्चित रूप से। हम ये नहीं कह रहे कि बस एकदम से ये बहुत आसान है। ऑफकोर्स जब हम ट्रांजिशन फेज के बाहर वास्तविक स्थिति में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आज की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन ट्रांजिशन फेज में ज्यादा संघर्ष होगा। तो अभी हमको केवल ये चॉइस करना है कि कौन सा संघर्ष लेना है, इस आधुनिकीकरण के प्रवाह में चलने वाला संघर्ष या इसके विपरीत दिशा में ट्रांजिशन वाला संघर्ष, कौन सा संघर्ष ज्यादा अच्छा है? संघर्ष तो दोनों जगह है, शहरी जीवन में जो रह रहे हैं उनका संघर्ष नहीं है, और वो संघर्ष तो बढ़ते रहने वाला है, धीरे धीरे कम नहीं होने वाला। तो कौन सा संघर्ष अच्छा है? ट्रांजिशन का संघर्ष है, वो संघर्ष है लेकिन धीरे धीरे कम होकर के आदर्श स्थिति में पहुंचने की बात है। लेकिन ये संघर्ष तो संघर्ष 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 और अधिक संघर्ष और अधिक संघर्ष इसी दिशा में जाएगा। तो केवल चॉइस हमारे पास ये है, संघर्ष तो इस भौतिक जगत में आए तो संघर्ष तो है ही, दुखालयम अशाश्वतम है ही, लेकिन ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए संघर्ष अच्छा है जो हमें अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करे। तो इसलिए इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए और ये समझ चाहिए कि यस ये डिफिकल्टी आएंगी तो ये हमारे बेटर फ्यूचर के लिए है, और हमें ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन नेक्स्ट जनरेशन और आसान होगा उनके लिए। अगर हम अभी शहर से गांव में जा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे यदि गांव में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो वो तो बचपन से ही ग्रामीण जीवन में रहेंगे और उसी वातावरण में रहकर के आसानी से अडॉप्ट कर सकेंगे इस ग्रामीण जीवन को, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा जनरेशन वैसे वैसे उनके लिए सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी ये हमारे हाथ में है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मेरे लिए डिफिकल्ट है तो आपके बच्चे के लिए और डिफिकल्ट होने वाला है शहर में रहना, वो बच्चा देखेगा। तो वी कैनॉट बी सेल्फिश, वैष्णव पर दुख दुखी, तो हम प्रचार की बात कर रहे हैं तो आगे आने वाले वैष्णवों के लिए भी हमें सोचना है ना। हम ज्यादा कष्ट लें यदि आने वाले जनरेशन को उससे कुछ फायदा हो तो। तो ये सब डिस्कशन यहां पर बेसिक थ्योरी उसका अंडरस्टैंडिंग यहां पर हम समाप्त करते हैं। अभी प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स हम क्या चाहते हैं और क्या इस विषय में यहां किया जाता है। तो महाराज से विचार विमर्श करने के बाद और प्रचारकों से विचार विमर्श करने के बाद तो ऐसा एक विचार है कि क्यों ना जो गुजरात में भक्त हैं वो मिलकर के धीरे धीरे ऐसी एक फार्म कम्युनिटी की दिशा में प्रयास करें जिससे कि जो कांग्रीगेशन है विशेष रूप से गुजरात का उनके लिए एक ऐसा आदर्श जगह उपस्थित हो जहां पर एक गुरुकुल हो जिससे जो कांग्रीगेशन है उनको अपने बच्चों को स्लॉटर हाउस में नहीं भेजना पड़े, जहां पर फार्म कम्युनिटी हो जिससे हमको और आने वाली पीढ़ी को ये फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में नहीं जाना पड़े। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वृद्धाश्रम, तो जो भक्त लोग वृद्ध हो रहे हैं उनके लिए भी वहां पर अनुकूल वातावरण मिले, फिर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए भी एक शांत जगह जहां पर वो अध्ययन कर सकें और फिर आकर के शहरों में और गांवों में प्रचार कर सकें। तो ये ऐसा फार्म कम्युनिटी मीन्स ऑल इंक्लूसिव एस्पेक्ट, मंदिर भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, संन्यास आश्रम भी है, गुरुकुल भी है, इट्स ऑल इंक्लूसिव। तो इस प्रकार से एक विचार है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन एक तरीका जो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं महाराज से विचार विमर्श कर लेने के बाद कि प्रथम तो हम एक गुजरात के अंदर एक गुरुकुल पहले शुरू करने के लिए तैयारी करें, और वो गुरुकुल का अर्थ है कि आधुनिक शिक्षा नहीं, आधुनिक केवल उतना जितना जीने के लिए जरूरी है, उतना हिस्ट्री उतना ज्योग्राफी उतना मैथमेटिक्स जो रहने के लिए जरूरी है, डिग्री के लिए नहीं, लेकिन पूरी शिक्षा होगी उनको प्रभुपाद की पुस्तकों पर आधारित, उनको भक्त बनाना ये मेन है, और जीविकोपार्जन के लिए जमीन और जमीन पर आधारित जीवन यानी कृषि गो पालन इत्यादि चीजें, और फिर ये बच्चे जब निकले वहां से तो हम उनको जमीन प्रोवाइड करें। आज जो गृहस्थ भक्त हैं वो अपने बच्चों के खर्च में, कल बताया भक्त ने कितना, 2 करोड़ में तो कितना जमीन आएगा बच्चे के लिए। तो आप जितना पैसा बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं उस पैसे को आप उसके लिए जमीन खरीदने में खर्च कीजिए, तो आप उस बच्चे को एक सॉलिड इकोनॉमिक बेस दे रहे हैं। ये डिग्री इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आप गारंटी दे सकते हैं बच्चे को कि वो उसको जॉब मिलेगा और जॉब कायम रहेगा, लेकिन आप उसको अगर जमीन देंगे तो अगर वो जब तक उसके हाथ में दम है तब तक वो उगाएगा और फिर आगे उसका बच्चा उगाएगा और वहां रहेगा तो खाएगा। और फिर ऐसा नहीं, एक जमीन है तो नेक्स्ट जनरेशन में कम से कम एक लड़के के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन यहां तो हर बार हर जनरेशन में आपको स्पेंड करना है और इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सब बुद्धिमानी की बात है, ये सब सोचना चाहिए कि हम क्यों ये कागज इकट्ठा करने में, कागज डिग्री इकट्ठा करने में पैसा व्यर्थ करें, इसकी जगह जमीन दें। और इसके लिए ऑफकोर्स हमें एक ग्रुप जो चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला आदमी रह सके, पूरे संसार के डायरेक्शन से विपरीत चल सके, तो इसलिए ग्रुप वर्क चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं जहाँ पूरा ग्रुप उपस्थित है, क्योंकि सहयोग चाहिए, हमें एक साथ ग्रुप में जाना होगा। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण, उसके लिए गांव चाहिए, कई गांव चाहिए। एक व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं उगा सकता, और अकेला नहीं उगाएगा तो जो नहीं उगाएगा उसके लिए उसको आधुनिक मार्केट पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लॉस होगा, बेचने जाएगा पैसा नहीं मिलेगा, खरीदने जाएगा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हमारी अपनी कम्युनिटी जिसमें हम अपने आप सब चीजें उगाएं मैक्सिमम 95% और फिर आपस में उसको बैलेंस कर सके, ऐसा चाहिए। फिर ट्रांजिशन फेज में हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। स्टार्टिंग में लैंड लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो इट विल नीड ए ग्रुप वर्क। तो ये सभी भक्तों को मिलकर के करना है। और फिर लीडर भी चाहिए, गृहस्थ भक्तों में लीडर चाहिए जो बाकी को अपने साथ लेके चल सके, कि मैं जा रहा हूं आप मेरे साथ आइए। सो वी नीड लीडर्स, ऐसे वी नीड पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेडी कि हम चाहते हैं इस तरफ आना। मे नॉट बी कि ऐसा नहीं कि वो कल पॉसिबल है, लेकिन क्रमिक रूप से धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर के, लेकिन उसकी तरफ दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा कि हमें इस तरफ जाना ही है। तो ऐसा एक ग्रुप चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। और फिर आप में से जो पेरेंट्स तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहेंगे, तो फिर ऐसे भक्तों का हमको सूची चाहिए, कितने लोग तैयार हैं, उसके आधार पर कितने बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उसके आधार पर फिर कौन उनको पढ़ाएगा वो डिस्कशन आएगा। तो उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं जो अनुभवशील हैं इसमें, वो लोग गृहस्थ हैं तो वो लोग सबके बच्चों का ध्यान रखें, और सब लोग जिनके बच्चे वहां हैं वो सब लोग बच्चों का और जो उनको पढ़ा रहे हैं उनका ध्यान रखें। तो कोई एक गृहस्थ भक्त है वो जिम्मेदारी ले बच्चों को, सब बच्चों को देखने की, सब मीन्स लाइक 10-20 लाइक दैट, और जो 10-20 गृहस्थ परिवार हैं वो उस गृहस्थ परिवार का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से पहले एक गुरुकुल अगर गुजरात के अंदर एक शुरू हो, तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी एक एंग्जाइटी है कि अगर हम फार्म में आए तो ये बच्चों की पढ़ाई का खर्च और ये सब का क्या होगा। तो अगर उनको ये सिक्योरिटी है कि अभी बच्चों का भविष्य के लिए ये डायरेक्शन है, तो खुद भी वो उस तरफ आने के लिए आसानी से आ सकेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग प्वाइंट एक गुरुकुल हो सकता है। और फिर साथ साथ हम जमीन लें, अभी हम जमीन नहीं ले रहे हैं तो जमीन के रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पैसा बैंक में रखने की जगह उसको जमीन में इन्वेस्ट करना जरूरी है, और वो लैंड इन्वेस्टमेंट कभी उससे खोट भी नहीं जाता है। तो इसलिए लैंड में इन्वेस्ट करना है, तो लैंड के लिए मार्गदर्शन हम दे सकते हैं कि किस प्रकार की लैंड होनी चाहिए जिसमें हम अच्छा एग्रीकल्चर कर सकें। बहुत सारे हमारे किसान भक्त यहाँ होंगे, मणिकाका हैं, तो जो लोग डायरेक्शन दे सकते हैं कि जमीन कैसी होनी चाहिए, तो ऐसे भक्तों को आगे आना होगा कि वो गाइडेंस दे सकें जमीन ऐसी, वो जमीन चूज करें और फिर सब लोग मिलकर के जितना इतना पैसा दे सके उसके अनुसार वो जमीन खरीदें, और फिर धीरे धीरे वो गुरुकुल वहां पर जा सकता है। और फिर धीरे धीरे एक ग्रुप जब तैयार हो मेंटली और फिर ट्रेनिंग से, तो वो गृहस्थ भक्तों का ग्रुप शिफ्ट कर सकता है वहां पर फार्म पर, और धीरे धीरे इस प्रकार से वो डेवलप हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है निश्चित रूप से, लेकिन जरूरी है ये चैलेंज लेना। तो इस प्रकार से हमने ये विचार व्यक्त किया है। अभी हम यहाँ पर जो गुजरात के टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पर सच्चिदान प्रभु हैं, आई थिंक और तो कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन मंदिर प्रमुख और प्रचारक जैसे चैतन्य महाप्रभु और राधेश प्रभु और अलग अलग सब नर्तक गुराम प्रभु, तो हम आप लोगों से सब रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आपके हाथ में है, आप लीडर्स हैं, आप प्रेरित करेंगे और गाइडेंस देंगे, सो समथिंग कंक्रीट कैन कम अप। तो इसलिए इस प्रोग्राम के बाद में, अभी क्वेश्चन आंसर होगा थोड़ी देर का, उसके बाद में जब ये प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा 1 बजे, तो उसके बाद में यहाँ पर एक काउंटर होगा बाहर, वहां पर जो भक्त लोग इस कंसेप्ट को समझ करके इसमें कुछ किसी ना किसी रूप में आगे आना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, खुद अपने आप आकर के धनराशि से या उनके पास कुछ एबिलिटी है किसी भी तरीके से, तो वो लोग एक अपना नाम दे सकते हैं, जिससे हमारे पास कम से कम, अभी हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सो वी कैन मेक सम डाटा कि कौन कौन तैयार हैं। और दूसरा, वो माता पिता जो अपने बच्चों को ये गुरुकुल के लिए भेजना चाहते हैं, तैयार हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट, तो ऐसा हमको लिस्ट एक मिल सकता है। तो कृपया आप लोग ये 1 बजे के प्रोग्राम के बाद वो एक लिस्ट दें, और फिर 1 बजे के बाद में मैं और मेरे कुछ साथी और शायद कुछ यहाँ के लीडर्स उपस्थित रहेंगे, तो इस विषय में डिटेल में, गुरुकुल के विषय में स्पेशली आपके कोई और डिटेल में प्रश्न है तो आप वहां पर हम कर सकते हैं, इष्ट गोष्ठी की तरह से, वर्णाश्रम इष्ट गोष्ठी की तरह से। तो यहां पर मैं समाप्त करूंगा, थोड़ा समय फिनिश, टाइम इज फिनिश। ऐसा ओके, तो आप अनाउंस कर दीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, श्रील प्रभुपाद की जय।